नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। तिरुचि में एक बैठक में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके की विफलताओं को राज्य की जनता के सामने लाने और भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने को कहा। उन्होंने राज्य की वर्तमान सत्ता को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एआईएडीएमके के नेताओं के साथ भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है।
अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के कार्यकारी निदेशक फाती बिरोल से मुलाकात की। इस मुलाकात में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। ये मुलाकात डॉ जयशंकर की यूरोप यात्रा के दौरान हुई, जिसमें वे सहयोगी देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को भी उजागर कर रहे हैं। डॉ जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी उनके साथ थीं। मादुरो पर मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप हैं। अमरीकी सेना ने शनिवार को एक सैन्य अभियान में मादुरो और उनकी पत्नी को उनके आवास से गिरफ्तार किया। विदेश मंत्रालय ने एक यात्रा दिशा निर्देश जारी कर भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित 41 साहित्यिक कृतियों का विमोचन करेंगे। ये कृतियां केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत विकसित की गई हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान द्वारा प्रकाशित 13 पुस्तकों के साथ साथ तिरुक्कुरल की 45 एपिसोड की सांकेतिक भाषा व्याख्या श्रृंखला का भी विमोचन किया जाएगा। संसद ने वर्ष 2025 के दौरान कुल 39 विधेयक पारित किए हैं। कुछ प्रमुख विधेयकों में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन, विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025, वक्फ संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक और भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास शांति विधेयक 2025 शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंद्र अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विशेष गहन पुनरीक्षण को रोकने के अनुरोध से संबंधित झूठे दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि SIR अभियान तृणमूल कांग्रेस के फर्जी मतदाताओं, दिवंगत मतदाताओं और अवैध घुसपैठियों को उजागर कर रहा है। बेनोनी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में डकवर्थ लुई नियम के आधार पर 8 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।